تین طلاقوں کو کتنا شمار کیا جاتا تھا؟ 3. اور آپ نے کہا نو اور طلاق نہیں, آپ یس یا نو لکھیں, وائی یا این لکھیں, ٹھیک ہے. ایک شمار, تین طلاقوں میں تین شمار کیا جاتا تھا, للہ ونا الیہ راجعون. تین طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا, یہی تو پرابلم ہے سب سے بڑا, یہی تو بیسڈ ہے, بیس ہے. اچھا جی, میں ابھی آپ لوگوں کو, اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انفارمیشن کے لیے 33 نمبر کو ایکسپلین کر دوں, ٹھیک ہے میں کر, چلیں میں کر دیتی ہوں, چلیں انشاءاللہ تعالی. جی یہی تو بیس ہے جس کی وجہ سے آج تک سارے مسئلے ہوتے ہیں, کہ ایک کوئی کہہ رہے ہیں کہ ایک شمار ہوتی ہے, کوئی کہہ رہے ہیں تین شمار ہوتی ہے, کوئی کہتے ہیں طلاق 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 دے دی, تین ہو گئی, بائنا ہو گئی, ختم ہو گئی, اب اس کے بعد جاؤ اور جا کے دوسری شادی ہوگی اور پھر ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی. یہی تو پرابلم ہے, اور ہمارے ملک میں زیادہ تر یہی چیز تو امپلیمنٹ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا نہیں تھا, ایک ہی شمار کی جاتی تھی, ٹھیک ہے. کون سے ورڈز کنفیوزنگ تھے, ایزی تھا لیکن ورڈز کنفیوزنگ تھے. کیا ورڈز بک سے باہر کے دیے ہیں, بک سے باہر کے اگر کہیں کے ورڈز ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ کوئی اپنے طور پہ ورڈز, یہ بک آپ نے پڑھی تھی یا نہیں, یہ چیپٹر پڑھے تھے نا, ان کے اندر سے جو ورڈنگ ہے کیا اس کے علاوہ کوئی ورڈنگ یوز کی ہوئی تھی. اب نمبر 33 انہوں نے پوچھا ہے, چلیں 33 پہ چلتے ہیں. 33, آدمی نے دوسری طلاق دینی ہو تو کب دے گا, واٹ ول بی دا ٹائمنگ, عدت کے دوران کسی بھی وقت دے سکتا ہے, یا عدت کے دوران پہلے ہے سے فارغ ہونے کے بعد دے سکتا ہے, یا عدت ختم ہو جائے تو دے, کس وقت دے, یعنی جو رائٹ طریقہ ہے طلاق دینے کا کس وقت دے. نمبر 33 کا آپ جواب بتائیں گے, اور لوگ بھی بتائیں. شکر ہے یہ تو آپ لوگوں کا کافی کا صحیح ہو گیا کہ جی عدت ختم ہونے کے بعد, جی بالکل صحیح کیا آپ نے, جی نورین آپ کا صحیح تھا کہ نمبر 3 ہے عدت ختم ہونے کے بعد. اللہ اکبر, نمبر 2 میں کیا تھا, عدت کے دوران پہلے حیض سے فارغ ہونے کے بعد, یہ کب, یہ کہاں سے لیا, یہ کہاں سے آیا, عدت کے دوران ہی دے دے, وہ تو غلط ہو گئی, عدت کے دوران تو دوبارہ دینی ہی نہیں چاہیے. اچھا شروع سے ہم کر لیں, چلیں پہلے کوسچن سے کر لیتے ہیں, اب پھر یہ نہ ہو کہ آپ کا وہ رہ جائے کتاب المساقات کا نا, اتنا ٹائم نہیں ہم نے کرنا. چلیں نمبر 1, اگر کوئی ایک ہی وقت میں, اچھا میں ایسا کرتی ہوں کہ کہیں اور سے کھول لیتی ہوں کیونکہ مجھے مشکل ہو رہی ہے. جی میں صرف ٹیسٹ کھول لوں اور پھر تاکہ میں پیل ٹاپ پہ بھی دیکھ سکوں نا. جی نمبر 1, اگر کوئی ایک ہی وقت میں تین بار طلاق بول دے تو گناہ کر رہا ہے یا نہیں. جی ٹھیک ہے. نمبر 2, حیض کے دوران دی گئی طلاق شمار نہیں ہوتی. شمار نہیں ہوتی, یہ بات صحیح ہے تو یس, اگر غلط ہے تو نو. یس بھی آ رہے ہیں نو بھی آ رہے ہیں, نو ہے اس کا آنسر. کیسے شمار ہو جاتی ہے پھر, شمار ہو جاتی, حیض کے دوران دی گئی طلاق شمار نہیں ہوتی, یہ بتائیں. بالکل جو آپ نے ٹیسٹ میں لکھا ہے نا وہ بتائیں, جو ٹیسٹ میں لکھا ہے وہ بتائیں. ہوتی ہے بالکل, شمار ہوتی ہے بالکل, تو سٹیٹمنٹ رانگ ہے بالکل. تو ہم نے لکھنا ہے نو, अच्छा, मजाहिया अंदाज में दी जाने वाली तलाक नहीं होती, ये गलत है या सही है? अच्छा, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछ लेते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मजाहिया अंदाज में दी जाने वाली तलाक नहीं होती, ट्रू फॉल्स है? जी फॉल्स है। पहले हम ट्रू फॉल्स ही लिखते थे, फिर आप में से किसी ने कहा नहीं जी हमें ट्रू फॉल्स नहीं समझ आती, यस नो लिखे। हालांकि यस नो ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अच्छा चले आगे देखते हैं। मर्द औरत की गैर मौजूदगी में किसी से कहे कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दिया तो भी तलाक हो जाएगी, ट्रू और फॉल्स? यस हो जाएगी। नंबर फाइव, मर्द और अच्छा नंबर सिक्स, तलाक के लिए बोलना जरूरी है क्योंकि सिर्फ लिख के देने से तलाक नहीं होती, ट्रू या फॉल्स? बोलना क्या इतना जरूरी है, अगर कोई लिख दे तो हो जाती है कि नहीं? अच्छा ये बात, चलें यस नो को छोड़ें, ये बात सही है कि लिखना जरूरी है, आई मीन बोलना जरूरी है? नो, हाँ जी ये फॉल्स है। तलाक 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 कहना जरूरी नहीं है, लिख के भी कोई दे दे तो फिर भी हो जाएगी। नंबर अगर नंबर अच्छा मैंने फाइव मिस कर दिया, कुछ इतनी कंफ्यूजन हो गई। नहीं नहीं मैंने नंबर फाइव बोला है, मर्द औरत की मौजूदगी में मजाहिया अंदाज में दी जाने वाली तलाक नहीं होती, ये फॉल्स है? जी फॉल्स है ये, क्योंकि मजाहिया में भी तलाक हो जाती है, हैज के दौरान भी तलाक अगर दिया तो हो जाएगी। हाँ ये अलग बात है कि उसको रुजू करने का हुक्म दिया गया, लेकिन हैज के दौरान भी जो अगर कोई तलाक दे देगा तो हो जाएगी बात। इसलिए देखिए मैं आप लोगों को ना वो क्वेश्चंस देती हूँ, ऐसे क्वेश्चन के मेरे पास आते हैं आप लोगों की तरफ से कि जी फलां ने ये क्वेश्चन पूछा, जो कि क्लास में कभी डिस्कस ही नहीं हुआ, जो उसमें सिलेबस में है ही नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। वैसे आप इंफॉर्मेशन के लिए जरूर पूछ लें, लेकिन वो क्वेश्चन मैं नहीं दूंगी, इसलिए कि जो चीज मैंने कवर नहीं की भी रिव्यू में या क्लास में कवर नहीं हुई भी, वो मैं कभी नहीं देती, क्योंकि ये फेयर नहीं है किसी के साथ भी। लेकिन ना जो लोग बाकी हैं, एक ने तो कुछ सवाल पूछ लिया और बाकी जो लोग हैं वो क्या उनको, उन्होंने अगर नहीं सवाल पूछा तो वो तो फिर रह जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन वही से आते हैं जो क्लास में कवर हुआ है या जो रिव्यू में मैंने आपसे कवर कराया हो, उसके अलावा इधर उधर से नहीं क्वेश्चन आएंगे। अच्छा सॉरी, मैंने एक कह रही है गुस्से में तलाक हो जाएगी और दी जाए तो भी हो जाती है, हो जाती है। इसी का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जी गुस्से में मैंने दे दी थी, तो गुस्से में भी हो जाती है, मजाहिया अंदाज में भी हो जाती है, हैज में भी हो जाती है, सब में हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिए, सब में हो जाती है। हाँ जी तलाक होती है एंगर में, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने मजाहिया कभी हो गया ना, किसी ने कोई बड़ी हंस हंस के कह रहा मुझे, मैंने तो आई वाज जस्ट किडिंग, लेकिन फिर भी हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये कवर हो गए ना, सारे सिक्स तक कवर हो गए। अच्छा नौ सेवन प्लीज, अगर खामिन ने पहली तलाक दे दी लेकिन फिर रजू कर लिया, फिर दोबारा जिंदगी में कभी तलाक दी तो दूसरी तलाक होगी? यस वो दूसरी तलाक होगी। फिफ्थ को मैंने मिस तो नहीं किया, मेरे ख्याल मैंने कर लिया। हाँ जी, मर्द औरत की गैर मौजूदगी में भी औरत नहीं अपने किसी दोस्त के सामने कह दे कि मैंने इसको तलाक दे दी है तो भी तलाक हो जाएगी। ठीक है, नंबर एट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कोई तीन तलाक एक ही वक्त में कहते थे तो वह भी तीन ही शुमार होती थी, ये हो गया है ना, तो इसका क्या आंसर होगा? नो, तीन शुमार नहीं होती थी, एक होती थी। जिस क्वेश्चन का आंसर आप कहेंगे ना नहीं इतनी नहीं इतनी होती थी, तो इसका मतलब है कि ये गलत है और जो आप कह रहे हैं वो सही है, तो फिर यहां पे नो लिखना चाहिए ना। ठीक है, बजाय इसके कि आप इसमें कंफ्यूज हो, जिसमें आप ये कह रहे होते ना नहीं तीन नहीं एक होती थी, तो वो इसका मतलब यहां पे आप नो लिखें, क्योंकि राइट वाली स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। अब आसानी हो सकती है इस तरह से, क्योंकि यस नो में ना आपको कंफ्यूजन हो। अच्छा, तलाक देने के लिए खामिन को बीवी की इजाजत लेना जरूरी है, और आप क्या कहते हैं लेना जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये वाली चीज गलत है, इसमें आप नो लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 10, इस्लाम औरत को भी तलाक देने का हक देता है, ये तो अभी डिस्कस कर लिया। नंबर 11, औरत का शोहर अगर उसे खर्चा भी देता है, वैसे भी अच्छा इंसान है, मगर औरत को उसकी शक्ल पसंद नहीं है, या इज्तवाजी ताल्लुक से मुतमईन नहीं है, या बस उसके साथ उसको नहीं अच्छा लगता, तो उस पे भी वो खुला ले सकती है। चलिए, शुक्र है। अब ये उम्मीद है आप लोग वही लिख रहे होंगे जो वहां पे लिख के आए हैं। नंबर 12, आदमी की नियत तलाक की हो मगर लफ्ज तलाक ना बोला हो, बल्कि ये कह दे तू मुझसे अलग हुई तो तलाक हो गई, नियत तलाक की है, तू मुझसे अलग हो गई, आज से मेरा तेरा रिश्ता खत्म, तू अब मेरी कुछ नहीं लगती है, तो हो गई। मतलब इस किस्म की कोई भी स्टेटमेंट जो मैं बाकी भी बोल रही हूं। अच्छा ठीक है। ये नंबर 13, खुला को एक तलाक समझा जाता है, इद्दत के बाद दोबारा उसी शोहर से निकाह हो सकता है। खुला को एक तलाक समझा जाता है और उसके बाद उसे निकाह हो सकता है। जी बिल्कुल सही। मर तलाक दे तो औरत से कुछ भी वापस नहीं ले सकता, खुला में जो चाहे लेकर मामला तय कर ले। जी ये तलाक और खुला में ये फर्क है कि तलाक में तो वो जाहिर खुद दे रहा है, तो औरत से कुछ भी वापस नहीं दे, खुला औरत खुद डिमांड कर रही है, इसलिए उससे कह सकता है कि तुम मेहर वापस करो, या जो मैंने तुम्हें तो चीजें जो तुम्हारे दीन या कोई चीज उनमें से कह दे कि इतने पैसे दे दो, इतने कर दो। तो नंबर 15, अगर कोई बगैर तलाक की नीयत के वैसे ही अपनी बीवी से कसम खा के कह दे कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, तो जिहार का कफारा देना होगा। अब इसमें यस और नो क्यों है? जी शाबाश, नो कॉज इट्स नॉट जिहार, ये जिहार है ही नहीं है, ये क्या है फिर? ईला है ना ये? हाँ जी, कसम का देना होगा। नंबर 16, ईला में 3 महीने की कसम अगर खाई और 3 महीने बाद ही खामिन वापस औरत के पास आए, तो कोई कफारा देने की जरूरत नहीं है। इज इट ट्रू? जी हाँ, बिल्कुल सही। नंबर 17, औरत को खामिन अगर इख्तियार दे के वो रहना चाहे तो रहे, ना रहना चाहे तो तलाक है, और औरत नहीं रहना चाह रही तो तलाक हो गई, क्योंकि उसने खुद ही इख्तियार दिया था ना। जी बिल्कुल सही है। नंबर 18, ईला भी एक तरह की तलाक है, ईला भी एक तरह की तलाक है। नहीं, ईला तलाक थोड़ी है। हाँ, मगर 4 महीने के बाद भी आदमी नहीं आता, नहीं रुजू करता, मैक्सिमम 4 महीने तक वो बस कर सकता है, उससे अलग रह सकता है, मगर 4 महीने के बाद भी नहीं आता, तो या तो तलाक दे या मामला वापस आए, कुछ तो करे, आप उसको लटकता हुआ नहीं छोड़ सकता। नंबर 19, तलाक बायना की इद्दत में नान नफका और खर्चा खामिद के जिम्मे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि आज यहाँ पे जिस मुल्क में हम रहते हैं, इसके कानून के मुताबिक यानी एलिमनी देना, वो कहते हैं सारी जिंदगी देते रहो, जब तक औरत जिंदा है तब तक मिले, या फिर जब औरत या 18 साल तक देते रहो, 20 साल तक देते रहो, तो इसका तो कोई भी जवाब नहीं मिलता। लेकिन तलाक बायना की इद्दत में भी नहीं देनी ना नफका और खर्चा खामिन ने, तो कहाँ के सारी जिंदगी देता रहे, या 15 साल दे या 10 साल दे। जी, और औरतें चूंकि यहां का ये कानून है, तो वो भाग भाग के अदालतों में जाती हैं, जबकि उनको पता है कि इस्लाम का ये कानून नहीं है, उनके ऊपर ये राइट नहीं है लेने का, वो फिर भी जाके वहां से तकाजा करती हैं कि यहां से हमें कुछ चूंकि मिल सकता है, तो इसलिए अब हम इस्लाम के कानून को तो पीछे छोड़ देते हैं, अब यहाँ का कानून में हमें चूंकि फायदा नजर आ रहा है तो अब हम लेते रहे, वो लेती रहती हैं। हाँ, ये जरूर है, बच्चे का खर्चा जरूर आदमी के जिम्मे, वो जितना भी होगा वो आदमी के जिम्मे है, और लेकिन औरत का खर्चा नहीं। हाँ जी, चाइल्ड सपोर्ट आदमी के जिम्मे है, क्योंकि ये उसकी औलाद है, औरत के साथ उसका क्या ताल्लुक रह गया बताएं? वो कहती जब तक मैं दोबारा शादी ना करूं, अगर दोबारा शादी कर ली तो फिर तो वो खत्म हो जाएगी, औरत को फिर नहीं मिलेगा खर्चा, लेकिन जब तक शादी नहीं करूंगी तब तक मिलता रहे, ये तो जायज नहीं है इस्लाम में। आपने यहां पे देख लिया ना, बायना की इद्दत में भी नहीं देना, तो तलाके रजई की इद्दत के बाद भी नहीं देना, और उसके इनको सारी जिंदगी देते रहे। अच्छा, तलाके बायना की, अच्छा नंबर 20, तलाके रजई की इद्दत के दौरान ही खामिन फौत हो जाए तो औरत उसकी वारिस होगी। जी बिल्कुल, वारिस होगी क्योंकि रजई तलाक है ना। अच्छा एक बात और बता दें, ये तलाके बायना की यहाँ पे मैंने इद्दत में पूछा है, तो तलाके बायना की इद्दत औरत कहाँ गुजारेगी? खामिन के घर पे या नहीं? अपना घर कौन सा? पेरेंट्स के पास, माँ बाप के पास? नहीं, हस्बैंड के पास नहीं गुजारेगी। अगर मैं ये क्वेश्चन कर लेती तो फिर आपका गलत हो जाता, ये खामिन के घर पे नहीं गुजारेगी। अच्छा, तलाक रजई की इद्दत कहाँ गुजारेगी? नहीं, होम ना लिखे, मुझे बताएं पेरेंट्स या हस्बैंड? हस्बैंड जी, तलाक रजई की इद्दत हस्बैंड के घर गुजारेगी जी। और औरतें क्या करती हैं, अब इधर तलाक तलाक हुई, उधर अपना सूटकेस बंद किया, और वो ही आपको ड्रामों और उसके अंदर दिखा देते हैं, तो वो सूटकेस बंद करके तो ये जा और वो जा, जिसने मुझे तलाक दे दी। नहीं, इद्दत वहीं गुजारेगी, ठीक है, ये बात सबको पता होना चाहिए। अच्छा जी, हमने कितने कर लिए हैं? अच्छा नंबर 21, हामिला मुतलिका हो या बेवा, उसकी इद्दत वजाए हमल है। ये तो बहुत ही आसान था जी। अच्छा यस, तो अच्छा 22, दूसरी तलाक की इद्दत के दौरान ही तीसरी तलाक दे दी तो तलाक बायना नहीं होगी। अगर इसका आप कुछ और जवाब दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब है ये फॉल्स है, अगर आप इसका यही जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब है यस जी। यस, तलाके बायना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? शाबाश, ये जवाब सही दिया इन्होंने कि जी क्योंकि अभी वो उसकी बीवी नहीं है, इद्दत में है जी, अभी वो इद्दत के अंदर है, वो इस वक्त उसको नहीं तलाक दे सकता, तो इसलिए ये तलाके बायना नहीं हुई, इस वक्त हो ही नहीं रही काउंट, ठीक है जी, आप रुजू कर सकते हैं। नंबर 23, ये भी बहुत मशहूर है चूंकि लोगों में, इसलिए मैंने आपको दिया, उम्र रसीदा बेवा की कोई इद्दत नहीं है। आप इसका कोई और अगर जवाब दे रहे हैं तो इसको फॉल्स कर दें यहाँ जी, ये गलत है, उम्र रसीदा है, जवान है, वो कहते हैं नहीं जी ये बूढ़ी हो गई है, इसकी कोई इद्दत की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये उम्र रसीदा, ऐसी कोई बात नहीं है, इद्दत उसके खामिंद के अफसोस की है, वो कोई उसमें बुढ़ापे या जवानी की तो कोई बात ही नहीं है। नंबर 24, औरत खामिद को जिना करते देखे तो लियान करेगी, जी ठीक है नो। नंबर 25, किसी औरत के साथ ज्यादती हो तो वो इल्जाम लगाने से पहले चार गवाह लाए, नो, इस चीज को बहुत प्रोपोगंडा बनाया जाता है। मेरे सामने किसी ने ये बात की थी, उन्होंने कहा इस्लाम के क्या है कामात है, इस्लाम तो कहता है चार गवाह लेकर आओ किसी के ऊपर तोहमत लगाने से पहले, तो उन्होंने इसको भी उसी कैटेगरी में डाल दिया, और उन्होंने कहा कि थिंक यू क्या यहाँ पे रेप होते हैं तो क्या औरत क्या जाके चार गवाह पहले लेकर आए कि देखो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो कौन सी बात है, जाहिर ही बात है इस्लाम है। कामात दे देता, लेकिन इस तरह से कुछ लोग जो कि इस्लाम की शरीयत को और इसको बदनाम करना चाहते हैं और इस्लाम के ऊपर
باتیں لگانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہی خاتون تھیں جو یہ کہہ رہی تھیں، لیکن ایک تو لا علمی ہے، جہالت ہے خود. جی آواز نہیں آ رہی کیا؟ اللہ جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی میں فون ابھی کھول نہیں سکتی، جلدی جلدی یہاں پہ کرنا ہے نا، کیونکہ آگے میں ابھی ان سے بھی پوچھتی ہوں، کتاب المستعان آئے گی تو اس کا نہیں، کتاب المساقہ آئے گی تو پھر میں ان سے پوچھ لوں گی. اچھا آگے دیکھیں، کیونکہ اس کے جلدی جلدی جواب دے دینا. اب آ گئی آواز، الحمدللہ. چلیں جی، نمبر 26، لیان ہونے کے بعد میاں بیوی میں طلاق بائنہ ہو جاتی ہے. جی جلدی جلدی اس کا جواب دیں. 24 کا ہے نو. اچھا جی ٹھیک ہے، طلاق بائنہ ہو جاتی. نمبر 27، لیان کے بعد مرد کو حق ہے کہ حق مہر عورت سے واپس لے لے. ایک تو الزام لگایا، اوپر سے حق مہر بھی لینا شروع کر دے. نمبر 28، مالک کو اپنی لونڈی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک حیض آنے کا انتظار کرنا ہوگا. یس بالکل صحیح. نمبر یہ اگلا ہے، آدمی پہلے دو طلاقیں دے چکا ہے، اب زندگی میں تیسری دے تو کب دے؟ اے عدت کے اندر اندر رجوع، سوری، آدمی پہلے دو طلاقیں دے چکا ہے، اب زندگی میں تیسری دی تو کیا ہوگا؟ عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے یا عدت کے اندر بھی رجوع نہیں کر سکتا؟ آپشن ون ہے یا آپشن ٹو ہے؟ آپ یہ دیکھیں، تیسری دی تو یہ کون سی ہو جائے گی؟ تیسری دے گا تو یہ کون سی ہو جائے گی؟ کون سی والی طلاق کیا لائے گی؟ اس کا نام کیا ہے؟ بائنہ. بائنہ میں رجوع کر سکتا ہے کیا؟ عدت کے اندر اگر رجوع ہی کرنا ہوتا تو پھر اس کو اس کے گھر بھیجنے کی، ماں باپ کے گھر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یہیں رکھ لیتے. تو رجوع نہیں کر سکتا، جبھی تو بھیجا نا. اگر وہ اس گھر کے اندر رہے گی تو کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ رجوع ہو جائے. اٹس کیس از کلوزڈ دین. ٹھیک ہے، طلاق مرتان قرآن کہتا ہے، طلاق دو دفعہ میں ہی ہے، اس میں ہی اگر چاہو تو روک لو اور چاہو تو جانے دو. یہ دو دفعہ میں ہی صرف چوائس ہے. طلاق دینا اس کا جائز طریق، اچھا یہ ہاں یہی ہے، طلاق دینے کا جائز طریقہ یہ کہ طلاق تب دے جب نمبر اے توہر کے سارے زمانے میں مرد عورت کے پاس نہ گیا ہو، پھر حیض آئے اس کے بعد، یعنی اب بالکل کمپلیٹلی کنفرم ہو گیا کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے. جی بالکل یہی آپشن ہے. اچھا جی اگلی دیکھیں، طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے یا 3 حیض ہے یا 1 ماہ؟ جی 3 حیض سے فارغ ہو جائے. خلع لینے کے لیے عورت کو اپنے خاندان والوں کو شوہر کے پاس بھیجنا ہوگا، یا شوہر کو منانا ہوگا کہ وہ طلاق دے، یا عدالت سے رجوع کرنا ہوگا؟ جی نمبر 3. اچھا آدمی نے دوسری طلاق دینی ہو تو کیا کرے؟ عدت کے دوران کسی بھی وقت دے دے. عدت کے دوران تو دینی ہی نہیں ہے، عدت کے دوران پہلے ایسے فارغ ہونے کے بعد دے یا عدت ختم ہو جانے کے بعد دے؟ جی نمبر 3 آپشن ہے نا. نمبر 6، ولایت کا رشتہ یہ ہے کہ جو ڈیش سے بنتا ہے، یعنی 4 مالکوں ان میں سے ایک آزاد کرتے، پھر تو ولایت ہوئی نہیں. نمبر سی کو دیکھیں، غلام اپنی آزادی کے لیے جو مکاتبت کرتا ہے، ریٹن کانٹریکٹ کرتا ہے، اس سے جو رشتہ بنتا ہے، اس سے تو کوئی رشتہ ہی نہیں بنتا، تو پھر نمبر 2 ہی ہوگا نا. ظاہر ہے نمبر 1 سے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ تو ابھی ظاہر ہے آزاد ہوگا، تو پھر نا ایک نے آزاد کیا تو اسے تو آزادی ملی ہی نہیں. جی آزاد کردہ غلام کا، جو آزاد کردہ مطلب جو ہو چکا ہے آزاد، اس کا اپنے مالکوں کے ساتھ، جو اس کے مالک تھے ان کے ساتھ آزادی کے بعد جو رشتہ بنتا ہے وہ ہے. اچھا اگلا ہے کہ آدمی نے 4 ماہ کے لیے ایلا کیا ہو مگر اس سے پہلے ہی واپس آنا چاہے تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت، بس ایسے ہی آ جائے. یا پھر نہیں، 4 ماہ کے لیے ایلا کیا، اسے پہلے آنا چاہ رہا ہے تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ 10 मिस्किनों को खाना खिलाना या 10 को कपड़ा पहनाना या 3 दिन के रोजे रखने होंगे या 2 महीने के रोजे रखने होंगे और 60 मिस्किनों। हाँ, तो ये नंबर 2 ऑप्शन क्यों है? शाबाश, कसम का कफारा, कसम के कफारे की वजह से, क्योंकि कसम जो उसने खा ली थी कि मैं 4 महीने के लिए मैं तुमसे अलग होता हूं, मगर उससे पहले ही अब 3 महीने बाद ही सोच रहा है, तो फिर अब कसम का कफारा देना होगा। और नंबर 3 किस चीज का कफारा है? नंबर 3 जो है वो किस चीज का कफारा है? वो तो जिहार का है, बिल्कुल, तो जिहार तो नहीं है ना ये। तो आप लोगों को तो माशाल्लाह सबके ही जवाब आते हैं, तो फिर परेशान तो होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। चलें जी, अच्छा जी, अस्सलाम मैंने शैतान रजी बिस्मिल्लाह, किताबुल मुसाका निकाल लें और इसके अंदर अब तो बिल्कुल चले, अल्हम्दुलिल्लाह आपको आ तो गए ना, सबसे बड़ी बात ये है। अब टेस्ट को छोड़ें कि टेस्ट का क्या, अब आप बस किताबुल मुसाका निकालें, क्योंकि जिन्होंने 1 टाइप किया है वो दोबारा जरा अपना बताएं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ सवाल, जिन्होंने 1 टाइप किया था कि उनको आता है, समझ में आ गई सारी। यहाँ पे नाम उनके टाइप कर दें ताकि उनकी लाइन खोलें, प्लीज एडमिन उनकी लाइन खोल दें, जिन्होंने वो अपना नाम बोले फिर मुझे पता चलेगा। हाँ नहीं, आपको तो नहीं मैं पूछूंगी, आपने तो 2 ही टाइप किया था। अच्छा ठीक है, एज लॉन्ग एज उन्होंने ये नहीं आंसर सुने हो। अच्छा जी, आप बताइए कि जिन्होंने कहा था कि हमें ये सारी आ गई हैं, समझ में आ गई हैं, वो प्लीज जरा। अच्छा चलें, हम जी सिस्टर फरजाना, जी फरजाना चौधरी, आप बताएंगी ये किस तरह, क्या चीज है आपको जो समझ आई है, इसका कोई खुलासा बयान कर दें। वालेकुम अस्सलाम
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुझे इसमें जो समझ आई है वो ये है कि जितनी भी किस्म की करेंसी जो है, लाइक सोना, रियाल या फिर डॉलर, रुपया, एक ही जिन्स के अकॉर्डिंगली हो, तो उसको कि वो अगर वो एक ही जिन्स है, डॉलर डॉलर है तो एक ही जिन्स बनी, सोना सोना है, चांदी चांदी है, तो उसका जो क्या कहना चाहिए, नकद पे एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन अगर सोना और चांदी को एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी अगर, तो उसका ये होगा कि वजन तो बराबर नहीं होगा, लेकिन ये कि उसको नकद यानी कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, उस पे नहीं कर सकते, उधार पे नहीं कर सकते।
सही सही, ठीक है।
और इसके अलावा जो है, अगर कोई अनाज है या खजूर है, अगर वो एक अच्छी किस्म है दूसरी खराब है, तो उसको भी जो एक्सचेंज करना का उसका ये कि फिर खराब को अच्छे के साथ नहीं कर सकते, जैसे कि 2 साथ दे के 1 साथ अच्छा नहीं ले सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि हम पहले खराब को बेच लें अलग से, उसकी कीमत से अच्छा ले लें, लेकिन एक ही जिन्स में जो चीज है।
और अगर ऐसे करेंगे तो ये क्या कहलाएगा?
चोट कहलाएगा।
शाबाश, ठीक है ठीक है। और ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैरन फरजाना। और किसको, जिसको समझ आई थी वो एक्सप्लेन करें, सिर्फ इसका मकसद ये है कि मैं जांचना चाहती हूँ कि आपको सही भी समझ आई है या नहीं। जी, और किस किस को समझ आई थी, प्लीज 1 टाइप कर दें यहाँ पे। जी शहनाज जी, इनकी लाइन खोलें प्लीज। जी इनकी लाइन खोल दें प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी बताइए शहनाज, आपको क्या समझ आई है?
जी वही बताया कि सोने के बदले जैसे सोना बेचना, और मतलब जिस सेम हो तो यू कैन कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 ममानतें बताई थी कि उससे इजाफा नहीं कर सकते, और नकद और उधार का भी बताया था कि ये फिर मतलब नकद होगा, ये सूद की कैटेगरी में फिर चला जाता है।
ठीक है, और
जैसे अनाज के बारे में भी बताया था कि अगर दोनों जिन्स सेम है तो मतलब अब उसको पहले अगर एक जैसे राइस है फॉर इंस्टेंस के जो अच्छी किस्म है और दूसरी इतनी अच्छी किस्म नहीं है, तो हम मतलब एक सा के बदले दो नहीं दे सकते, पहले हम इसको बेचेंगे और फिर
और जींस फर्क हो तो फिर क्या
ले सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते।
और जींस फर्क हो तो क्या,
जींस में फर्क हो तो फिर उसकी भी कीमत लगाई जाएगी, जैसे सिल्वर और गोल्ड का अगर हो तो क्योंकि जाहिर है सोना इज ऑलवेज एक्सपेंसिव और सिल्वर जो होता है उसकी कीमत
तो हम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, हम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते।
एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन उसमें मतलब अगर उसकी कीमत जैसे डबल बनती है तो वो कर सकते हैं, फिर डबल कर जा सकती है।
मैं समझी नहीं कि यानी एक्सचेंज कर सकते हैं किसकी कीमत, यानी
एक मिनट उस्ताज़ा ये इमरजेंसी कॉल आ रही है।
अच्छा आप देख लें, कोई नहीं। नेक्स्ट किसने कहा था, मुझे समझ आ गई, जो इनको समझ आई है इनकी लाइन क्लोज कर दें। नेक्स्ट किसने कहा था, दो लोग हो गए, तीसरा किसने कहा था जी मुझे जरा बता दें, कोई आपकी वो काबिलियत नहीं मैं देख रही, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ आपको क्या समझ में आया। चलें ठीक है, अगर नहीं है कोई और तो फिर हम बात पे आते हैं क्योंकि ऐसे टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। चलें जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा जी, उनको खुद ही सामने आना चाहिए ना जिन्होंने वन टाइप किया था। चलें ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, चूंकि काफी लोगों को नहीं समझ आया था। अच्छा ये कह रहे हैं थोड़ी देर में पैल टॉक बंद हो जाएगा, अच्छा अगर बंद हो गया तो मुझे बता दीजिएगा फोन पे आके। अच्छा आप लोग जल्दी से इस वक्त एक टेबल बनाएं, टेबल बनाएं जल्दी से, ऊपर लिखें उसके अंदर कॉलम्स बनाएं, जैसे मैंने आपको तलाक और इसके इद्दत वगैरह के सिखाए थे ना, तो आप उसमें कॉलम्स बनाएं। पहला कॉलम बनाएं, कॉलम बनाने आते होंगे ना आपको, एक बॉक्स बनाएं उसमें पहला कॉलम बनाएं जींस लिखें उसके टॉप पे, दूसरा कॉलम बनाएं उसके टॉप पे लिखें मिकदार, ठीक है, तीसरा कॉलम चाहे बनाए चाहे नहीं बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नकद या उधार, क्योंकि यही चीजें हैं ज्यादा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊं। अच्छा पैल टॉक तो बंद हो गया, दोबारा ट्राई कर लेती हूँ, अगर दोबारा सर्विस आ गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को फोन पे और लाइव ब्रॉडकास्ट पे ही हम इस बात को करेंगे। नहीं जी वहां पे सर्विस नहीं आ रही, उम्मीद है आप लोग जो यहाँ पे हैं लाइव ब्रॉडकास्ट पे, अच्छा आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा वो बंद हो गया पैल टॉक, सब यहाँ पे आ जाएं प्लीज, क्योंकि ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने लगी हूँ आप लोगों को। अब आपके एक डब्बा बन गया, उसके अंदर आपके तीन कॉलम्स हैं, पहले कॉलम के ऊपर लिखा हुआ टॉप पे जींस, दूसरे के टॉप पे लिखा हुआ है मिकदार, तीसरे के टॉप पे लिखा हुआ है नकद स्लैश उधार, ठीक है, ये तीन कॉलम्स हो गए आपके। पहले कॉलम में नंबर वन पे नीचे लिखें, जींस के नीचे लिखें सेम, लिखें सेम, मेकदार के नीचे लिखें सेम, और थर्ड कॉलम में जाके नकद या उधार है उसके नीचे लिखें नकद, जरूरी है। अच्छा अब अगला सिनेरियो देखें, जब सेम लिखा था जींस के नीचे, उसके नीचे अब लिखें, यानी सेकंड हमारी चॉइस जो है कि फर्क, जींस में फर्क आ गया, फर्क लिखें, मिकदार में भी लिखें नीचे फर्क, कर सकते हैं, और जिसमें नकद और उधार लिखा हो उसमें भी लिखें नकद, जरूरी है। अच्छा अब आप ये जो सब ये जो जो आपने ये कॉलम्स बनाए हुए हैं ना, तीन आपके कॉलम्स हैं, चौथा एक और कॉलम बना ले मिसाल, सबसे टॉप पे लिखें, देखें आपने पहला कॉलम के ऊपर लिखा जींस, दूसरे कॉलम के ऊपर लिखा मिकदार, तीसरे कॉलम पे ऊपर लिखा नकद या उधार, चौथा एक और कॉलम बना ले आगे जाके उसके ऊपर लिख लें मिसाल, फिर मैं आपको इंशाल्लाह समझा देती हूँ और ये आपको भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। यहां तक आप सब मेरे साथ हैं, वन टाइप करें, यहां तक सब मेरे साथ हैं। अच्छा 5 मिनट्स, अच्छा जी अगर आपने ये टेबल बना लिया ना तो आपको सारा समझ आ जाएगा। अब मिसाल में लिखें, जहां पे आपने सेम लिखा था ना, सेम वाले के सेम वाली लाइन में मिसाल में लिखें डॉलर के बदले डॉलर या सोने के बदले सोना। अच्छा, नेक्स्ट लाइन जिसमें फर्क लिखा था आपने, जींस में फर्क लिखा था ना, फर्क फर्क कर सकते हैं, नकद जरूरी है। अब अगली जो लाइन है उसमें इसी के नीचे वाली लाइन में आप लिखें डॉलर के बदले रुपीज, सोने के बदले चांदी। बस ये सिर्फ अगर टेबल आपको समझ आ गया तो आपको सब समझ आ गया। इसमें टेबल में क्या है, अब सारे सबने यहां तक कंफर्म करें, जरा वन टाइप कर दें कि सबका टेबल मुकम्मल हो गया। जिन जिन्होंने टेबल बना लिया वो वन टाइप कर दें। और जी आप लोगों का तो मुझे नजर आ रहा है जी, बाकी लोग भी अच्छा मेरे ख्याल में हैं, वो शायद लिसनर्स में। ठीक है, तहसीन आपका भी आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि उन लोगों का भी, मैं यहाँ पे आप लोगों के रिस्पॉन्सेज नहीं दे सकती, अगर आप लोग लॉग इन कर लें तो आप लोग भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग नहीं, मेरा पैलटॉप नहीं ओपन हो रहा तो इसलिए। अच्छा ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसको। सारी हदीसों का एक मैंने आपको समरी ये चार्ट बनवा दिया, इसमें क्या है। अब लॉग इन करने को छोड़े, हम बस मेरी बात इस वक्त सुने। जींस अगर सेम होगी तो मिकदार क्या होगी, वो भी सेम रहेगी। ठीक है, सेम रहेगी। मिकदार मतलब क्या, जींस सेम है यानी फॉर एग्जांपल कोई भी जींस ले लें, सोना ले लें, रुपीज ले लें, तो मिकदार सेम रहेगी। यानी दो तोले या तो वो भी दो तोले, चार तोले या तो चार तोले, पांच तोले या तो पांच तोले। और इसमें नकद होगा या उधार, नकद जरूरी है, दोनों सिनेरियोज में नकद जरूरी है, सो इट्स डजंट मैटर। और फिर हमने मिसाल दी है डॉलर के बदले डॉलर की, अगर आप डॉलर लेकर जा रहे हैं वहां पे उसके पास बैंक के पास और आप कह रहे हैं कि मुझे $20 के डॉलर ही दे दो, तोड़ के दे दो या कुछ दे दो, तो वो उसको पांच पांच के नोट दे दो तो वो आपको चार पांच के ही नोट देगा, दो दस के नोट दे दो तो दो दस के ही देगा, या $20 नया दे दो तो वो $20 ही देगा। ये नहीं देगा कि $19 दे, ये नहीं देगा कि मैं तोड़ के दे रहा हूं तो आप जो है ना आप मुझे इसके एक कम करके दूंगा, ये दिस इज नॉट अलाउड। ओके, नंबर टू सिनेरियो देखते हैं, जींस में फर्क आ गया यानी सोने की जगह चांदी हो गई, आई मीन ट्रेडिंग जो एक्सचेंज है वो दे कुछ और रहे हैं और ले कुछ और रहे हैं, सेम नहीं है जो लेने और देने वाली चीज है, फर्क हो गई, तो मिकदार में भी फर्क होगा। बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप सोना दे रहे हैं किसी को तो वो आप इतनी बड़ी चीज दे रहे हैं, मसलन दो तोला मैं सोना देती हूँ तो वो मोर एक्सपेंसिव है ना, चांदी मैं उसके बदले में लूंगी, चांदी लेस एक्सपेंसिव है। चांदी हो सकता है वो मुझे चार तोले दे, अगर उसने मुझे दो तोले ही इन रिटर्न दे दी तो मैं तो बड़े नुकसान में रही, क्योंकि मैंने अपना सोना दिया दो तोले तो दो तोले चांदी थोड़ी लूंगी, मिकदार में तो फर्क आएगा, वो तो मुझे जायरा बढ़ा के दे। अब अगर इसी तरह मैं डॉलर देती हूँ तो डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, रुपीज की कम है, तो जब मैं डॉलर $1 देती हूँ तो वो मुझे ₹100 देता है और ₹100 देना ठीक है, ठीक है, फिर क्योंकि वो चेंज हुआ ना, उसका मोड चेंज हो गया, स्पेसिफिमन चेंज हो गया, जिन स्पेसिमन कह सकते हैं। अच्छा, अब ये भी नकद जरूरी है, ठीक है, और इसकी मिसाल अब हमने देख ली, सोने के बदले चांदी या डॉलर के बदले रुपीज हो गए या और जो भी करेंसियों के आप नाम लिख सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप पे लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रही हूं, ये रूल्स सिर्फ करेंसी या सोने चांदी के लिए हैं या उन चीज उसके लिए जो यानी को कीमत के तौर पे कोई दी जाती जो कन्वर्ट हो जाती सोने चांदी में। ये रूल्स अनाज के लिए नहीं है, मसलन मैं खजूर दे रही हूं तो मैं कह रही हूं कि जो है ना नहीं उसके लिए बस नकद ही जरूरी है, वो नहीं इस तरह से वो नहीं हो सकता कि अगर मैं फर्क करके जींस दे रही हूं, मसलन मिसाल के तौर पे कि अनाज की जींस मसलन बदल गई, अब मैं खजूर दे के और फॉर एग्जाम्पल चावल ले रही हूं तो उसमें नकद उधार कर सकते हैं, या मैं खजूर कर रही हूँ, खजूर दे खरीद रही हूँ और डॉलर दे रही हूँ तो मैं उसके अंदर उधार चल सकता है। ये जो जो हमने जो टेबल बनाया या जो हमने अहदीस पढ़ी है वो ओनली एक्सचेंज उस वक्त जब की करंसी हो या जब सोना चांदी हो उस वक्त के लिए, ओके ये ऑल द टाइम के लिए रूल नहीं है, यानी सारी चीजों के लिए खाने पीने की। अब हम खरीदारी करते हैं कभी जाके हम उनको कहते हैं उधार दे दो ये चीज उधार दे दो बाद में हम आपको पैसे दे देंगे, ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। मगर हाँ जैसे हम कहते हैं डॉलर के बदले रुपीज वगैरह इस तरह से हम करते हैं, हम आपको इतने डॉलर देते हैं आप हमें इतने रुपीज दे देना, वो नकद जरूरी है उसके ऊपर आप उधार नहीं कर सकते। हम यहाँ से कहें पाकिस्तान वालों को जी हम आपको इतने डॉलर देते हैं आप इतने रुपीज दे देना उधार आज आप ले लें हमसे, तो वो कहते हैं हम साल बाद तुम्हें इतने दे देंगे रुपीज, तो वो नहीं सही। और उसके बाद आपने देखा ना ये कितने झगड़े होते हैं उसके बाद, नहीं जो उस वक्त तो इतनी डॉलर की कीमत थी आज तो इतनी है हम तो आज के लिहाज से देंगे, वो कहते नहीं जी आप उस वक्त के लिहाज से दें डीवैल्यू हो जाता है, और बड़े झगड़े भी होते हैं इस तरह के। ये बात समझ आई है कि नहीं? अब मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि मैं आप लोगों से पूछूं। अच्छा मैं फोन लाइन खोलती
हूँ,
किसी को नहीं समझ आई फोन पे मुझे बता दे, नहीं तो
अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा बस यही था, यहाँ तक अगर समझ आ गई तो यही था सारा कुछ।
लेकिन एक सवाल मेरा है उस्तादा आपसे कि जैसे रुपए डॉलर दिए हो उधार, तो अभी आप कह रहे हैं ना कि डॉलर दिए तो डॉलर ही डॉलर फिक्स कर ले, जैसे पाकिस्तान में जाते हैं किसी ने उधार लिए तो रेट तो अप एंड डाउन होता है ना, तो डॉलर के बदले रुपए वो तो हम बैंक में जब जाते हैं तो करते हैं, जैसे किसी रिश्तेदार को दी हो उसको तो वो डॉलर के बदले डॉलर ही उधार रखे कि डॉलर के बदले रुपए जो उस वक्त का रेट हो, जैसे आज का एग्जांपल तो
नकद जरूरी है फिर उसमें उधार नहीं चल सकता,
नकद जरूरी है
इन दोनों में नकद जरूरी है
जी, तो फिर ये है कि आज के दिन का जो उधार दिया हो डॉलर वो अगर पाकिस्तान से लेने हैं तो आज का रेट फिर
जी बिल्कुल बस, और नकद दे या इस हाथ दे उस हाथ ले, ये नहीं है कि अच्छा रेट भी तो फिक्स कर दिया तो उसके बाद मैं एक हफ्ते बाद दूंगा, नहीं ठीक है नकद, यानी नकद का मतलब है इस हाथ दो इस हाथ लो, उधार नहीं चलेगा कि दो दिन बाद दूंगा दस दिन बाद दूंगा, ये नहीं चलेगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा ये जो
एक बात वो थी कि उन्होंने जो कहा था कि अगर सोना देते हैं सुनार को जैसे वो
जी जी उसके ऊपर भी मैं आती हूँ,
अच्छा तो वो जेवर देते तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आया,
अच्छा वो भी मैं जवाब देती हूँ। और किसी का यहाँ तक सबको समझ आ गया या टेबल समझ आ गया?
जो मैं अभी ये पूछ रही हूँ ना सिस्टर नजिया, अभी जो हम पूछ रहे हैं तो आपने कहा कि ये नहीं कि दो दिन बाद वो नकद ले ले,
नकद का मतलब होता है इस हाथ दे उस हाथ ले,
नहीं तो जरूरी नहीं है ना, तो वो तो मतलब सालों साल कोई लेता है,
नहीं 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 वो नहीं करना, वो नहीं करना सालों साल कोई करना है, वो तो उधार ही हो गया ना,
नहीं है ना फिर वो रुपए में नहीं करना,
वो तो फिर उधार ही हो गया ना,
अस्ताफरुल्लाह वो वाली बात नहीं मैं कर रही, सूद रिबाब की बात नहीं मैं कर रही, सूद ही है ना, लेकिन जो आज की मतलब प्राइस है हम ये नहीं है ना कि अप एंड डाउन चलते रहे भाई, उस दिन उस जमाने में फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल हम सब के लिए कि साल भर रेट डाउन हो जाए, आज जो है तो वो वाला हम एक दूसरे से बात कर ले पेपर पे लिख ले ठीक है, ये तो लिखना हम
वो तो आप एक वैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मगर यहाँ तो आप वो आपको डॉलर के बदले डॉलर ही दे रहा है ना, तो नकद है जरूरी, आप डॉलर के बदले डॉलर की बात कर रही हैं?
नहीं मैं डॉलर के बदले इधर की बात मुझे समझ आई, तो हम कहीं और कर ही नहीं सकते ना, डॉलर के बदले डॉलर ही
राइट,
ये अभी मैं बात हम सब के लिए है बात कर रही हूँ, डॉलर के बदले पाकिस्तान में जैसे हम देते हैं खानदान वालों को उधार के तौर पे मैं बात कर रही हूँ, तो अभी उनके पास तो नहीं है, उन्होंने लिया 5 साल के लिए ठीक है, तो 5 साल के लिए लिया तो आज का रेट उनके साथ फिक्स कर दे कि भाई मैंने तो आपको इस साल इस महीने दिया था ये रेट,
ये अब इंशाल्लाह ये बात जो है ना हम
सूरत में ये नहीं, लेकिन लेना हमने नकद ही है, लेकिन लेना हमने रुपए में, अब वो या तो फिर डॉलर जो होगा वो डॉलर के बदले डॉलर हमें चेंज करके रुपयों में वो दे दे, $1,000 के बदले $1,000 दे दे, चाहे 5 साल बाद दे,
नहीं तो नहीं ये
रेट है
नहीं नहीं उसमें, अच्छा मैं एक आपको बात बता दूं, मैं मुझे आपका सवाल समझ आ गया, एक बात आपको बता दूं, जो पहली लाइन आपने लिखी है ना जिसमें सेम लिखा है उसमें आगे लिखने कि अगर उधार पे हुआ तो सूद हो जाएगा, उसकी एंड में लिख ले मिसाल के बाद, यहाँ पे ही पता चलना चाहिए कि अगर उधार के ऊपर हुआ या कमी बेशी का वो मामला हुआ तो फिर ये सूद हो जाएगा, ठीक है। ये इसी को सूद कहा गया है, जो 1023 हदीस में, 24 हदीस में, 1025 हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अव्वा आइन और रिबा, ये यही तो रिबा है, ये वाला जो आप पहली लाइन के एंड में लिखने तक। और जो आप कह रही है ना कि हमने रिश्तेदारों को दिया और वो, तो हम इंशाल्लाह ताला फिर उस्ताद से पूछ लेंगे कि इसका क्या है, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बात कर लेंगे।
मैं जहन में एक बात आ रही है, ये कहीं इन्फ्लेशन की बात तो नहीं हो रही है?
जी जी जी।
अच्छा
अच्छा,
क्योंकि डॉलर टुडे वोंट बी द सेम, अगर मैं
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
सेम तो नहीं होगा इन्फ्लेशन, लेकिन हम उसके अगर 5 साल बाद भी लेते हैं ना, तो मैं क्लियर आपसे खुद से भी जो मुझे समझ आई है और मतलब चलता आ रहा है, जाहिर है एक दूसरे से इंसान लेता करता है, तो हम उसको रिबा सूद के तौर पे बीच में ऐड नहीं करते, बस जो आज की बात है बस वही खत्म है, चाहे डॉलर दे दो चाहे।
लेकिन 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 आप ये नहीं ना बात समझ रही कि चलो यहाँ पे तो हम डॉलर की बात कर रहे हैं, लेकिन डॉलर की कीमत हर दिन बदलती है, राइट, हर दिन बदलती है, तो देने वाले को कभी बहुत नुकसान हो जाता है, 5 साल बाद वो डॉलर उतने का थोड़ी होता है।
ना हो, लेकिन हमने तो आज दिए तो आज की बात खत्म कर दें बस आज की, मैं ये
हाँ ये अब हम उनसे पूछ लेंगे कि क्या ऐसा कर सकते हैं, इसके ऊपर क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरह से करके किया जाए, मैं नहीं इसके ऊपर कुछ कह सकती हूँ क्या,
ठीक है।
अच्छा अच्छा, आप हम इस चीज के ऊपर नहीं डिस्कस करते, आप लोग बस मुझे ये बताएं, आप लोगों को ये चार्ट समझ आ गया, इस चार्ट में से कोई चीज है तो फिर आप मुझे बताएं, ये इनके सवाल को हम इंशाल्लाह उस्ताद से पूछ लेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है।
हमें अभी नखत की बात हो रही है ना?
जी जी जी।
सजा एक क्वेश्चन है मेरा, आपने बोला ना इस करंसी का तो समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह
जी,
आपने कहा कि अनाज में नहीं होता, लेकिन देखें अगर हदीस नंबर 1025 में देखें कुछ जो है उन्होंने ताकि सूद का शुबा ना रहे,
राइट राइट,
इनके ये भी
तो यानी अनाज के उसके अंदर मैं ये कह रही हूँ कि यानी जब किसी अनाज को खरीदना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई खजूर है तो आप उसको डॉलर के बदले खरीद रहे हैं, तो उसमें उधार कर सकते हैं, इसमें आपने देखा कि उधार नहीं किया जा सकता।
जी जी जी,
ठीक है
ठीक है,
इसमें उधार नहीं कर सकते, उसमें उधार करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपने ही शायद क्वेश्चन भेजा था, मुझे नहीं पता किसने आप में से कोई क्वेश्चन इसी तरह का भेजा था ना, कि हम तो यानी अपनी दुकान वगैरह के लिए अक्सर उधार के ऊपर ही चीजें लाते हैं और फिर उसके बाद उसको बेचते हैं और फिर करते हैं, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, इसीलिए मैंने बताया ये रूल सिर्फ करेंसी या सोने चांदी एक्सचेंज वगैरह के लिए, यानी कि नकद के ऊपर जरूरी है, बाकी चीजों को उधार के ऊपर हो सकता है, नहीं ये उसकी नहीं बात हो रही, ये जो यहाँ पे हदीस पे आप कह रही है ना, वो तब की बात है जिस वक्त के एक खराब चीज को दूसरी अच्छी चीज के बदले में ज्यादा दे के और थोड़ी दूसरी अच्छी चीज ले ली, उसकी बात नहीं मैं कर रही, मैं नकद और उधार की बात कर रही
हूँ
जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबको समझ आ गया, अल्लाह का शुक्र है, ये बस इतनी तक ही अभी तक हमने अहदीस की, और अगर ये चार्ट समझ आ गया तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको आगे समझने में। ये जो जिन्स की बात हुई है जी,
सलाम जो हमने अभी टेस्ट किया उसमें था कि जब तीसरी दफा तलाक दे दे तो इधर तरह चल रही तो नहीं कर सकते, इधर नहीं होती होगी।
मैंने शुरू में कहा था कि जब किताबुल मसाका शुरू होगी तो फिर हम टेस्ट का नहीं, फिर ये मेरे टेबल का क्या रहेगा, आपके जहन के अंदर क्या जाएगा अगर आप टेस्ट भी सोचते रहेंगे। लेकिन मैं आपको भी जवाब दे देती हूँ, पहले मैं एक बात का पहले बता दूं, सिर्फ ये किताबुल मसाका से, अच्छा ये पहले सुन ले, अच्छा फिर मैं इनका सवाल का भी जवाब देती हूँ, अभी मैं इनका सवाल का जवाब देना भी जरूरी है। अच्छा जी देखें, ये थोड़ी सी बात समझ लें, जो इन्होंने 1024 और 1025 हदीस का बताया है, याद रखिएगा कि ये खजूर की बात हो रही है, लेकिन इसके अंदर कोई नकद और उधार की बात आप देखें नहीं है कहीं पे भी, राइट। तो नकद और उधार की बात, वो जो पहले मैंने आपको चार्ट लिखवाया उसके अंदर सोने चांदी और करेंसी की जैसे मैंने बात की, तो उसमें नकद लिखवाया ना दोनों सूरतों में। तो ये जो नीचे हमने खजूर और इसकी बात की, अगर इसको खरीदना हो तो फिर जो पैसे देके खरीदा जा सकता है या इस तरह, तो वो उधार के ऊपर हो सकता है। हाँ, जहां तक ये रूल है कि मिकदार सेम है तो फिर जिन सेम है तो मिकदार सेम होगी, ये वाला रूल तो यहाँ पे भी चलेगा, खजूर में भी चलेगा ये रूल। इसमें नहीं आप ऐसे करेंगे कि जो है ना वो खजूर जो है ना वो तो सोने चांदी के लिए था तो इसके लिए नहीं है। इसके अंदर ये वाला रूल यहां तक तो चलेगा, जिन सेम तो मिकदार सेम, जिन फर्क तो मिकदार फर्क, ये यहां तक तो चलेगा। मगर नकद और उधार वाला जो कॉलम है ना, उसमें अजनास का नहीं होगा। ठीक है, या तो आप लिख लें या फिर ऐसा कर लें कि आप जहां पे आपने सेम लिखा हुआ है और फर्क लिखा हुआ है, इसके साइड पे लिख लें, इसके राइट साइड पे एक और कॉलम बना के उसमें लिख लें सोने चांदी और करेंसी के लिए, सेम के भी राइट पे और फर्क के भी राइट पे सोने चांदी और करेंसी के लिए। ठीक है, और तीसरा एक नीचे सबसे नीचे एक लग, और से भी नीचे तीसरा सिनेरियो एक लिख लें अजनास के लिए जेंस वाले कॉलम में लिखेंगे सेम तो मिकदार सेम, नकद या उधार दोनों सूरतें चल सकती हैं। और फिर उससे नीचे फिर दोबारा जिन्स लिखें, फिर लिखें फर्क, फिर उसके बाद मिकदार फर्क, नकद और उधार कुछ भी चल सकता है। यानी पहली दो ऑप्शंस सोने चांदी और करेंसी के लिए, दूसरी दो ऑप्शन अजनास के लिए, दूसरी दो ऑप्शंस जो लास्ट वाली दो ऑप्शंस हैं उसमें पहले दोनों कॉलम सेम है जो ऊपर वाले दो कॉलम है, लेकिन आखिरी जो नकद और उधार का उसमें नकद भी हो सकता है उधार भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी सिर्फ कहने का मकसद आपका यह है कि जो अभी तक हमने लिखा है ये सोने चांदी और करेंसी के लिए है, मगर अजनास के लिए भी जिन सेम होगी मिकदार सेम होगी, जिन्स फर्क होगी मिकदार फर्क होगी। हाँ, बस ओनली डिफरेंस इज कि उसमें उधार भी हो सकता है। ठीक है, बस बाकी और कोई चीज नहीं है जो इसके अंदर फर्क है। अच्छा, आपने क्या पूछा है यहाँ पे कि सो लोन नहीं दे सकते किसी को इंडिया में। अच्छा, ये जो अभी राहत सवाल कर रही थी ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम सर से पूछ लीगा। सेम अनाज कैन बी एक्सचेंज, हाँ जी बिल्कुल सेम अनाज एक्सचेंज हो सकता है, मगर सेम के उसके ऊपर, फिर ये नहीं होगा कि फर्क हो। यानी सेम मसल मैं आपको खजूर दे रही हूँ, आप मुझे खजूर दे रहे हैं, अब मैं आपको एक किलो खजूर दूं, आप भी मुझे एक किलो खजूर दें, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको एक किलो खजूर दूं तो आपका ये तो रद्दी खजूर है तो मैं इसके बदले में आपको अच्छी वाली जो है ना आधा किलो ही दूंगी, क्योंकि आपकी तो इतनी घटिया वाली खजूरें हैं। ठीक है, ऐसी वाली एक्सचेंज नहीं हो सकती। यू गॉट इट और नॉट? अगर फिर ऐसे ही, अब मैं अपनी रद्दी को खजूर को कहां लेकर जाऊं, तो मैं अब क्या करूंगी, फिर मैं उसको बेचूंगी और बेच के मसलन मुझे $5 मिलते हैं तो मैं $5 से आपसे अच्छी वाली खजूर ले लूंगी। सो क्वालिटी डजंट मैटर ओनली क्वांटिटी मैटर्स, ये क्वांटिटी की यहां पे बात हो रही है। राइट, क्वालिटी अगर डिफरेंट है तो देन गो एंड सेल इट। क्वालिटी ये नहीं है कि आप, ये भी गलत बात होगी ना, ये तो कोई भी सौदा नहीं करेगा कि मैं आपको गंदी गंदी चीजें दे दूं और मैं आपको कहूं कि आप अच्छी अच्छी वाली बिल्कुल मुझे दें, तो फिर आप उसको सेल करें और उसके पैसों से फिर अच्छी वाली लें। ठीक है, यस yes। अच्छा, अब जहां पे इन्होंने गोल्ड की बात की, गोल्ड का भी मैंने असल में आप लोग परेशान पहले ही हो गए थे पिछली दफा ही कि ये बहुत मुश्किल वाले काम आते, मैंने उसके बाद कहा ही था कि मैं गोल्ड का भी आप लोगों से डिस्कस करूंगी, क्योंकि एज विमेन हम इस चीज से गो थ्रू करते हैं कि अब हम गोल्ड अपना पुराना लेकर गए हैं और अब हम उसको कहते हैं कि ये ले लो और कोई और, वो कहता है अच्छी चीज मेरे से ही ले लो, कोई और अच्छी चीज नहीं, मतलब गोल्ड की कोई और चीज मुझसे ले लो। ये आप नहीं कर सकते अगर वो उतने तोले का ही नहीं दे रहा। अगर तो आपकी चीज दो तोले की है और वो भी दो तोले की चीज आपको इवन एक्सचेंज कर देता है और सिर्फ मेकिंग ले लेता है आपसे, क्योंकि जाहिर है मेकिंग उसकी लगी है, तो फिर देन इट्स फाइन। लेकिन अगर वो इवन एक्सचेंज नहीं करता, आपकी तो दो तोले की चीज है और वो इसको कहता है कि नहीं मैं आपको जो बेचूंगा ना तो डेढ़ तोले की आप ये अंगूठी इसके बदले में ले लें, तो नहीं। जो मैंने हमने कहा ना क्वांटिटी मैटर्स, क्वांटिटी मतलब वेट उतना का उतना ही होना चाहिए। ओके, ये बात समझ आ गई सबको? लाइव ब्रॉडकास्ट पे आके प्लीज 1 लिखते हैं, क्योंकि हम लाइन खोलते हैं तो सारों का फिर शोर आता है ना। अच्छा, मेरे ख्याल में आपका ये सवाल है तो उम्मीद है सबको समझ आ गई हो। नहीं, गोल्ड प्राइस डिफरेंस का क्या ओवर द इयर्स? देखिए अगर मैं उसको अपनी 2 तोले की चेन लेकर गई हूं तो आज की प्राइस जो होगी उसका ही वो मुझे देगा ना। आज की 2 तोले की मैं चीज लेकर गई हूं तो वो मुझे 2 तोले ही वापस देना, यानी ये थोड़ी है कि मैं 2 तोले की लेकर जाऊं वो मुझे 1.5 तोले का चीज दे रहा है, ये तो फेयर नहीं है। हमने यहां पे पढ़ा ना, जिन्स सेम मिकदार सेम, इट्स नॉट अलाउड कि वो कम करके मुझे दे। हाँ ये हो सकता है कि वो 2 तोले की चीज दे रहा है, वो कह रहा है मैं आपसे एक्स्ट्रा $50 $100 $200 चार्ज कर रहा हूं कि इसकी मेकिंग बहुत बहुत फाइन मेकिंग हुई भी है तो इसकी ये इसकी मेकिंग बड़ी एक्सपेंसिव होती है, दूसरी तरह का बना हुआ। आई हैव 2 तोले गोल्ड चेन एंड टुक 1.5 गोल्ड बैंगल्स एंड ही काउंटेड मेकिंग मनी इन दैट इज नो 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 दैट इज नॉट ओके। They don't do this way, then we should not go on this path. फिर आप बेचें उसको, वो आपकी जो 2 तोले की चेन है आप उसको बेचें, जितने पैसे होते हैं उससे आप उससे और चीज खरीद लें और वो फिर उसमें मेकिंग लगाएगा या जो भी लगाएगा। हाँ वो तो सोने की काट वगैरह भी काट लेते हैं, बिल्कुल जी। हाँ जी, राइट वे क्या होगा? सेल इट, और फिर अगर आपको लगता है कि वो इस तरह से नहीं मानते तो फिर आप बेचें और उसके बाद फिर उन पैसों से खरीदें, ठीक है? ये बात हो गई। अच्छा यहां तक हमारे हो गए ना क्वेश्चन इसके? जी सोना कम रह जाता है, बिल्कुल आपकी बात सही है। वो कहते हैं कि हम इसमें से काट काट रहे हैं लेकिन जब बेचने लगे फिर भी तो काट काटे ना, फिर क्यों नहीं काटता? तो उसमें इक्वल होना चाहिए, सेम वेट होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बस यहाँ तक आपको समझ आ गई तो बस आपकी सारी हो गई है आधी। गिव 2 तोले गोल्ड, टेक 2 तोले गोल्ड एंड गिव मेकिंग मनी सेपरेट, इज दैट ओके? बिल्कुल ये सही है, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। बस सिंपल एज दैट, कोई इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज नहीं थी जिसपे हम उस दिन से परेशान हो रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। अब आ गई बात तलाक की। आप मुझे ये बताएं, अब मेरा ख्याल शायद अब पैल टॉप मेरा आ गया होगा, हालांकि आप लोगों ने टेस्ट किया लेकिन सर में दर्द मेरे हो गया। हाँ जी आ गया मेरा पैल टॉप, अब जो ज्वाइन करना चाहें आ जाएं प्लीज रूम में, ताकि मुझे आपके रिस्पॉन्सेज नजर आए ना तो मुझे भी पता चले कि आप क्या कह रहे हैं ना। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी आते जाएं जल्दी जल्दी पैल टॉप ज्वाइन करें। अच्छा ये आपने चार्ट में पहली वाली लाइन के एंड में लिख लिया हुआ ना कि वरना सूद हो जाएगा, अगर नकद उधार का मामला उधार किया या फिर अगर कमी बेशी की, तो इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन मीट ना हुई तो। अब आपके मुझे रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, प्लीज मुझे बता दें आप लोगों को समझ आई है।
जी आप लोगों को समझ आई है?
अच्छा माइक जी मैं लेती हूँ, जज़ाकअल्लाह। जी आप लोगों को समझ कुलसुम
कहाँ, उनको समझ आई है बात?
कुलसुम कहाँ, उनको समझ आई है?
चार्ट बना लिया आपने? अच्छा जी
चार्ट बना लिया?
चले थ्री तोले थिंग सो बेस्ट वुड बी सेल एंड टेक मनी एंड देन बाय 3 तोले। बिल्कुल
थ्री तोले थिंग सो
अगर वो आपको इवन एक्सचेंज करता तो मनी फाइन, अगर नहीं करता तो मैं
बिल्कुल।
जी कुलसुम आपको समझ आई है?
अगर वो आपको
चार्ट बना
करता तो फाइन, अगर नहीं करता तो मैं। जी कुलसुम आपको समझ आई है? आप
थिंग इज ऑफ 2 तोले, नहीं नहीं फिर नहीं आप कर सकते, देखिए मिकदार फर्क हो गई ना। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जी अब जो बात इन्होंने पूछी है, अब यहाँ तक हमारा हो गया ना किताबुल मुसाफात का, अब तो नहीं कोई बात ना रह गई। जी अब ये जो इन्होंने पूछा है, आप लोग मुझे बताएं कि तलाक रजई जो है ना, तलाक रजई, अब मैं आपसे क्वेश्चन करना शुरू हो गया। अब मैं पहले आपको 1 घंटा समझाती रही हूं, अब उसके बाद अब मैं आपसे कुछ अगली दफा करूंगी, आप पढ़ के आइएगा। मैं कह रही हूं कि आप लोगों ने टेस्ट किया लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने टेस्ट किया, इतना मेरा सर दर्द हो गया। ये जो किताब तलाके रजई है, तलाके रजई जो है इसको क्यों कहते तलाके रजई? यहाँ पे जरा प्लीज लिख दें, तलाके रजई क्यों कहते हैं? शाबाश, क्योंकि रुजू कर सकते हैं जी, इसीलिए तो कहते हैं। तीसरी तलाक को तलाके रजई नहीं कहते, उसको तलाके बाइन कहते हैं, क्योंकि उससे हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, आप कोई नहीं उसके साथ रजू करने का रास्ता रहा। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, तलाक मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफिन और तस्रीहुम बिएहसान, चाहे तो तुम एक दफा उसको रोक लो, तो इद्दत के अंदर रोक लो, अब तुम्हारा राइट है, नहीं तो फिर उसको जाने दो अच्छी तरीके से। ये मर्रतान सिर्फ हो सकता है, मर्रतान टू टाइम्स ओनली हो सकता है, ठीक है, उसके बाद नहीं हो सकता। उसके बाद की इद्दत ये है कि बस उसे जुदाई की उसके अंदर पता चल जाएगा कि अगर ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, या जो भी चीजें हैं वो, यानी अगली शादी करने से पहले पहले उसको ये इद्दत गुजारनी है। वो इद्दत इसलिए नहीं है कि भैया रजू करे, फिर आप पूछ रही है ना कि इद्दत क्यों है, फिर इद्दत इसलिए कि अगला निकाह नहीं कर सकती, इस टाइम तक उसको अपने आप को रोकना है, आखिर आगे भी तो कहीं जाके करेगी ना निकाह, थोड़ी अब इसी के साथ जुड़ी हुई है। अब वो जो नया करेगी किसी और आदमी के साथ, उसको करने से पहले उसको ये टाइम पीरियड इद्दत का गुजारना होगा, उसके अंदर पता चल जाएगा कि अगर वो प्रेग्नेंट है या क्या है। पर ना तो देखिए ना, नसब गलत मलत होने का चांस है, वो आगे जाके फिर शादी कर ले अगले दिन ही, इधर से गई घर पहुंची उस अगले किसी और के साथ हफ्ते बाद कर ले, और बच्चा अगर इसका हो तो किसी और का पता चल जाए, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं इस वक्त फोन के नहीं क्वेश्चन ले सकती, मुझे कहीं जाना भी है, तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से अब मैं 4 वीक्स के बाद इंशाल्लाह मुलाकात करूंगी, ठीक है। 4 वीक्स के बाद अब आपका फिर रिव्यू होगा, तो फिर इकट्ठा ही हम कर लेंगे फिर सारा। बस आप लोगों को ये बात आज तक अगर समझ आ गई है और आप कह रहे हैं कि समझ आ गई है, तो फिर इंशाल्लाह ताला इसकी रिव्यू की नहीं जरूरत जी, क्लास होगी, क्लास का नहीं मैं सिर्फ कह रही हूँ, रिव्यू नहीं होगा, ठीक है, क्लास होगी आपकी 12:30 पे इंशाल्लाह ताला, आप लोग ज्वाइन कर लिया करेंगे अलहसान की वेबसाइट से जी। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मैसेज भेज दिया जाएगा वाइबर पे जब आपका रिव्यू होना होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल सीरा क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।